الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج منگل کا دن ہے. منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر وفاق کتاب مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے. بحث کردن سنی و فلسفی و جواب دادن دہری کے منکر الوہیت است و عالم را قدیم دانت. سنی اور فلسفی کا بحث کرنا اور دہریہ کا جواب دینا جو منکر خدا ہے اور عالم کو قدیم سمجھتا ہے, عالم کو قدیم سمجھتا ہے. دہری اس کو کہتے زمانے کو, یعنی وہ سمجھتا ہے سب کچھ ایسا. آیا کہ بے گفت عالم حادث است, فانی استی چرہ کش وارث است. فلسفی یہ گفت چوں دانی حدوث, حادثی یہ ابر چوں داند غیوس. ذرائی تو نیستی از انقلاب, توچ میں دانی حدوث آفتاب. کرم کے کاندر حدث باشد فین, کہ بداند آخر و بند و زمین. چیست برہاں بر حدوثی ای بگو, ورن خامش کن فزو گو مو بجو. ای بتقلید از پدر بشنی دئیے, از حماقت اندرا پیچی دئیے. گفت دیدم اندر بحری عمیق, بحث می کردند از اوی دو فر دو رفیق. در جدالو در شکالو در شکو, گشت ہنگامہ برادر کس گرو. سوئی آ ہنگامہ گشتم من ربا, تا بیابم اطلاع از محال شام. میکی از جمع ہنگامہ شدم, اطلاع از حال ایشان بستدم. آیا کی میں گفت گردوں فانی است, بے گمانی ای نبارا بانی است. وادگر گفتو قدیم و بے کیست, نیست آتش بانی بایانی دیست. گفت منکر گشت اے خلاک را, روز و شب آرند و رزاق را. گفت بے برہان خواہم من شنید, آچ گوئی آپ تقلید گزید. ہی بباد در حجت و رہا کہ من, نشتوم بے حجتی را در زمن. گفت حجر در درونی جان مست, در درونی جان ہا برہان مست. تو نمی بینی ہلال از ضعف چشم, من ہمی بینم مکن بر مر تو خشم. گفت گو بسیار گشتو خلق کیج, در سر پایائی چرخی نسیج. گفت یارا درد و درونم جہجت است, بر حدوث آسمانم آیت است. من یقیدانم نشانش آب ود, من یقینا کی در آتش آب درد. در زبامی نایدا حجت بدا, ہمچو حالو سر عشق عاشقا. نیست پیدا سر گفتا گوئی من, جس کی زردی وہ نظاری روئی من. عشق خون بر روح روانہ می رود, حجت حسن و جمالش می رود. گفت من ایہاں ندانم حجت, کی بود در پیش آما آیتے. گر بیاری من کنم آرا قبول, ورن کوتا کن سب کرتا کن سخن با عرض طول. گفت جو قلبی و نقطے دم زنند, کی تو قلبی من کویم ارجمند. ہست آتش امتحان آخری, خاندر آتش طرف تندا دروق دو قری. آم و خاص از حال ایشا عالم شمند, از گمانو شک سوئی ایقار وند. یقیناً حضرت کے کلام کا لطف تو فارسی میں ہے, جو فارسی جانتے ہوں ان کا صحیح لطف اٹھا سکتے ہیں. ترجمے میں بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہے, ہاں جی, لیکن بہرحال ترجمہ بھی ضروری ہے, کیونکہ بغیر ترجمہ کے جو فارسی نہیں جانتے ان کو کیسے اس کے مضامین پہنچیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سوز ہے, اس میں مزہ ہے, لیکن نہ اس میں مزہ چاہے, مطلب مزہ ضروری ہے, نہ اس میں سوز ضروری ہے, نہ اس میں حکایت ضروری ہے. اصل چیز اس کے وہ مفاہیم ہے جو بنیاد ہے تمام چیزوں کے. اس وجہ سے ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ظاہر مطلب ترجمہ اور مفہوم اور تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. एक सुनी कहता था कि जहान हादिस है और आसमान भी फानी है और खुदा ही इसका मालिक है। ज़ाहिर है हमारा अकीदा यही है, यही कहेंगे। यानी अब मौलाना तफाउल जमादात पर एक हिकायत बयान करते हैं, जिससे आग का हक व बादल का पहचानना ज़ाहिर होता है। जब ये मालूम हो चुका तो अब हल कि कल एक शख्स कह रहा था कि आलम हादिस है और ये आसमान जो कुछ के अंदर है सब फना होने वाले हैं, उस फना के बाद है खुदा सिर्फ बाकी रह जाएगा, जिस तरह वारिस अपने मोरस के मौत के बाद बाकी रहता है। फलसफी बोला, तुझे हादिस का क्या इलम है, अगर अब्र हादिस हो तुम्ही को उसके हदूस की क्या खबर। यानी सुनी के कौल को सुनकर एक फलसफी दारिया ने कहा कि इसका हदूस का पता तुझे कैसे चला, ये तो तुझसे पहले से है, फिर तू कैसे कह सकता है कि हादिस है और किस वक़्त में मादूम था बात को मौजूद हुआ। भला ही कहीं अबर के हदूस को बारिशें भी जान सकती है और तू अपने तकल्लुब अहवाल के सबब के कि पहले तू मादूम था अब मौजूद फिर मादूम हो जाएगा। असल में बुनियादी तौर पर तो एक कजबासी होती है, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग को चुप करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यही लोग दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं और दूसरे लोगों को ज़ाहिर मतलब है कि अपने जिसको कहते हैं सूडो इलम उसके ज़रिए से दबाते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इलम है, हालांकि वो कुछ भी नहीं जानते। हाँ जी, एक दफ़ा ये इफ्तिखार आरिफ साहब, ये जो उसके उर्दू मुख्तदर कौमी ज़ुबान उसके चेयरमैन थे, तो मैं फहमुल फलक की किताब जब लिखी तो उसके साथ भी मिला, क्योंकि ऐसी किताबें लिखवाते हैं, उनके साथ भी मिला तो बहुत मुतासर हुए इससे और मुझे कहते हैं कि ये किताब तो हम छापेंगे, लेकिन मैं आपको मिलाना चाहूँगा परवेज़ हूद भाई के साथ, जो बहुत बड़े दारी हैं, मतलब इस कायद अजम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में रहे और बहुत बड़े दारी हैं, मशहूर दारी हैं, तो उनके साथ आपको मिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा उसको तो मैं साइंसदान भी नहीं मानता, तो हैरान हुए क्योंकि फिजिक्स के तो बड़े माने हुए मुंझे हुए साइंसदान समझे जाते। तो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो साइंसदान नहीं है। मैंने कहा फिज़िक्स उसका फील्ड है और फिज़िक्स में एक उसूल एंट्रोपी जो लॉ है, थ्योरी नहीं है, लॉ है, और साइंसदानों के ऊपर लाहौजत होती है क्योंकि साइंसदान जिस चीज़ का दावा करते हैं तो उसके कवानी को तो मानेंगे, तो उनके ऊपर लाहौजत होती है। हाइपोथेसिस और थ्योरी ये तो चेंजेबल होती है, लेकिन ला उसको मानना पड़ता है। तो मैंने कहा कि एंट्रोपी एक ला है, उस एंट्रोपी की ला के मुताबिक चीज़ें, मतलब ये कि उनमें तगैर होता है, चीज़ों में तगैर होता है, डिसऑर्डर होता है, यानी अगर वो पहले से ऑर्डर में है तो उसमें डिसऑर्डर की टेंडेंसी होती है, वक़्त के साथ साथ उसमें डिसऑर्डर बढ़ता जाता है, ये इसके जो है ना मतलब ये है कि इसकी टेंडेंसी है। तो जब डिसऑर्डर की टेंडेंसी है और उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है, किसी फाइल की ज़रूरत है कि उसको मेंटेन रखे, वरना वो मतलब ज़ाहिर वो डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। तो मैंने कहा जिस जो चीज़ पहले से ऑर्डर में नहीं है उसको ऑर्डर में लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, पहले से एक चीज़ ऑर्डर में नहीं है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन सारे बिखरे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं कौन किधर किधर क्या, सारी चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, अब इसको ऑर्डर में लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि यही तो खुदा का काम है, खुदा ने तमाम चीज़ों को कर लिया, खुदा का फ़ाइल हकीकी है, लिहाजा फ़ाइल हकीकी के बगैर कोई चीज़ खुद बखुद हो नहीं सकती। तो वो एंट्रोपी ला को नहीं मानता, तो नहीं मानता तो मैं इसको साइंसदान कैसे मानूं। तो इफ्तिखार आरिफ साहब खामोश हो गए, जाहिर उस बेचारे वो तो उर्दू का आदमी था, मजीद क्या कहता। हाँ जी, मकसद मेरा यह है कि ये इतना ज़्यादा वो नहीं होते, हमारे एक फवाद साहब हैं, अल्लाह ताला करे कि मौजूद हो, क्योंकि मैं बाद में उनसे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहुत सही पेशावर के मेरे पास आए थे एक ख़ास मसले में, वो था, चूंकि वो बहुत ज़हीन थे, कुरान पाक के ऊपर उसकी बड़ी स्टडी थी, और ये देहरियों के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत थे, उनके पीछे पीछे फिरते थे, खुद फिरते थे उनके पीछे, धैर्यों को पकड़ते थे, और उनके सामने दो बातें रखते थे, कहते भाई एक चीज़ में इसमें से आपको लेना पड़ेगा, एक आप लोग का थ्योरी है फ्रॉम नथिंगनेस टू नथिंगनेस, यानी कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं होगा, ये आपका थ्योरी है, और एक हमारी थ्योरी फ्रॉम गॉड टू गॉड, यानी अल्लाह था और अल्लाह रहेगा, तो ये है, मतलब मैं इसको लेता हूँ तुम ये इसको ले लो, तो मेरे साथ बात करो। पकड़ लेते उनको, बड़े तंग होते थे उनसे, उनसे भागते थे, जहीन बच्चा था ये, हमारा कासम फोर्ट नहीं है, मतलब जो यानी फोर्ट एयरपोर्ट है ना, ये उनके वालिद के नाम पर है, उनके वालिद का नाम कासिम था, ये मतलब जो है ना वो शहीद हो गया था, तो उसके नाम पर ये एयरपोर्ट बनाए हुए हैं, ये उनके बेटे थे, ये शम्सुल हक जो थे, ये वापटा के जो चेयरमैन जो मतलब रिटायर हुए हैं, ये शम्सुल हक के बीवी के भांजे थे। हाँ जी, मतलब जा रहे हैं वो, तो उनका जो है ना मतलब ये है कि मुझे मेरे साथ तो कही होगा कि किसी देहरी ने, मुलहद ने मीरास के ऊपर एतराज़ किए थे, मीरास हमारे मीरास के जो उसूल, उन दिनों में फाल मीरास मुदल किताब में लिख चुका था, और बड़े मुदलल अंदाज में था, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ था, तो अल्लाह ताला ने का शुक्र है उस पूरा हो गया था, तो वो जो इतराजात का जवाब देना चाहता था उनको, तो उनको कोई आदमी मिल नहीं रहा था कि किसके साथ पूछा जाए, वो जो सवाल जो उठाए थे वो उनको जवाब मिल नहीं रहा था, हत्ता कि मौलाना उस्मानी साहब से बात की, लेकिन हजरत तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, इस तरह और लोग जो थे ना गांधी तक पहुंच गए थे, मतलब ये कि वो कि मतलब वो कहते हैं, गांधी ने कहा कि मैं आऊँगा होटल में कमरा लूँगा और मैं आपके साथ बात करूँगा, और ये उसने तो हामी भर ली थी, इस तरह मतलब ये कि काफ़ी लोग, लेकिन गांधी के सब पर वो ज़रा वो हो गए थे, क्योंकि गांधी तो सही आदमी नहीं, उसको तो उसको पता चल गया था, तो ऐसा हुआ कि ये अकबल अयाज साहब जो चेयरमैन है आजकल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, ये इसको ज़ाहिर है मतलब हमारे यानी वो साथी रहे, क्योंकि वो पेशावर यूनिवर्सिटी में थे, उसको पता था मेरा केस, मैं इस पे काम कर चुका हूँ, तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन उसके भाई को मैं जानता हूँ, वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में, तो आप उनसे मिले और उनसे एड्रेस ले ले और उनसे मुलाकात कर ले, फिर आपको माशाल्लाह मसला हल हो सकता है, वो उसने उस पर काम किया है, तो पहुंच गए जी, सारे भाई से पता नहीं फ़ोन पे बात की क्या है, लेकिन बहरहाल एड्रेस हुआ, टेलीफोन मुझे किया, टेलीफोन मैंने रिसीव किया, तो उनसे टाइम ले लिया, पहुंच गए, और सारी थ्योरी मेरे सामने रख के, ऐसे हुआ ऐसे ऐसे, मैंने किस पे तो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और ये सवाल के जवाब में दे चुका हूँ अपनी किताब में, कहते मुझे जल्दी दे दो, मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उसको किताब से उसको नकल कर दी, और कंप्यूटर से करना मुश्किल भी नहीं होता, वो मैंने उनको दे दिए, वो बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए, फिर वो मुझे इनवाइट किया कि आप पेशावर तशरीफ लाए हमारे पास, तो काफ़ी मालदार लोग हैं ज़ाहिर है उधर, तो एक मकान मतलब उसने खसूस तौर पर रखा था मेहमानों के लिए, तो मैं इस्लामी वो मैं रुतलाल कमेटी के इजलास में, उन दिनों पेशावर में इजलास था, तो जा रहा था, तो उनको मैंने टेलीफोन किया भाई मैं फिर वैसे भी आ रहा हूँ, पेशावर आ रहा हूँ, तो मैं बजाय एक होटल में ठहरने के आपके साथ ठहर जाऊँगा, ज़ाहिर मतलब है कि वो कोई मसला नहीं, तो ये जो है ना मतलब ये है कि मैं फिर उनके साथ ही ठहरा, तो उसने कहा बस ये घर आप अपना समझें, और जब भी आप पेशावर आएंगे तो हमारे पास ही रहेंगे, और ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप इस पर ज़रूर मतलब जो है ना वो ये सारे काम छोड़ दे, उस जज्बाती आदमी थे, आप सारे काम छोड़ दे, ये रोहितलाल कमेटी और ये क्या चीज़ है, किसकी कोई ज़रूरत नहीं है, असल काम ये है जो दूसरे नहीं कर सकते, अब ये काम कर ले, खैर ज़ाहिर मैं उसकी जज्बात की कदर भी कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे जज्बात थे, लेकिन बहरहाल हम जज्बाती अंदाज में तो फैसले नहीं कर सकते, ये तो एक पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है, तो खैर बहरहाल ये मैंने अर्ज़ किया कि ये जो है ना, ये जो है ना धारिये, इनके पास इतने दलायल नहीं होते, लेकिन इनने रोब अपना बनाया होता है, और चूंकि पूरी दुनिया के अंदर जो सिस्टम्स है इनके पास है, यानी यूँ कह सकते हैं कि सोशल मीडिया और दूसरे मतलब मीडिया के जो जगह हैं वो इनके कब्ज़े में हैं, तो इनकी बातों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिलती है, और दूसरे अगर कोई सही जवाब देता है तो उनको आगे पीछे कर लेते हैं। मसला बुनियादी ये है कि मतलब हमारे पास कोई वो नहीं है, ज़राए नहीं है, वो ज़राए की मार दे देते हैं। हाँ जी, हमारी बात को किसी कुटे लाइन लगाते हैं, और वो जो है ना मतलब है कि उनकी बात को इतना ऊंचा चढ़ा देंगे कि पता नहीं कि दुनिया में तूफान आ गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और ये फिर ये गांधी का जो तरीक़ेकार है ये भी इस किस्म का है कि ये शोशा छोड़ता है और डिस्कशन नहीं करता। इसके अंदर ये बहुत मुसीबत है कि डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेगा आपके साथ। अगर आप टीवी पर बस अपनी बातें कर लेगा, फिर इसके बाद आप अगर उनके साथ बात नहीं तैयार होगा। मैं खुद इनके साथ एक मसले में जो इसने मीरास का गलत मसला बताया था कि अपनी किताब इस्लामी मईशत में, तो उसने बिल्कुल कुरान के अंदर तारीफ किया था। बहुत खबीस आदमी है, मतलब जाहिर है इन आदमी सोच नहीं सकता। यानी आप अंदाज़ा कर ले, जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो पहले तो मेरा सर चकराया, मैंने कहा ऐसे हो नहीं सकता, ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैंने अपने ऊपर बदगुमानी की कि ये मुझे समझ नहीं आया, इसने सही लिखा होगा लेकिन मैं उसकी बात नहीं समझ रहा हूँ। और चूंकि बस में मैं रीडिंग कर रहा था, तो वो ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ पर पहुँच गया तो फिर मैंने दोबारा पढ़ा इसको, फिर भी वही चीज़। पता नहीं क्या अजीब बात है, तो हो नहीं सकता भाई, कोई कुरान में तारीफ कैसे कर सकता है। मसलन आप हजरात तो जानते हैं कुरान में सूरह निसा का जो रुकू है, तो उसमें जो बहनें हैं और जो बेटियां हैं ये ज़ुल्फ़ुरूज़ हैं, मतलब उसमें बाकायदा उसमें मौजूद है। तो इसने उसको असबात साबित किया है, उस असबात भी कैसे साबित किया, उर्दू के मुहावरों से। मैं हैरान था, मैंने कहा अल्लाह कैसे, मैं इस आदमी को क्या समझूं। तो खैर बहरहाल ऐसे हुआ कि मैं फिर जो है ना यूसुफ साहब हमारे हैं बड़े, मौलाना अब्दुलहक नाफे साहब के बेटे, मौलाना अब्दुल्ला का कखेल जो यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी में डीन थे, उनके भाई, तो बड़ा इल्मी ख़ानदान है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप ये किताब पढ़ लें, क्या ये यही बात कर रहा है जो कि मैं समझ रहा हूँ या कोई और बात कर रहा है। तो उसने उसको पढ़ा, उस कहते बात तो यही कर रहा है जो आप समझे हुए। मैंने कहा तो फिर कमाल है, तो मैं समझ नहीं सकता कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कुरान के अंदर कोई तारीफ कैसे कर सकता है। अच्छा खैर, कहते मैं अपने भाई से बात करता हूँ। मौलाना अब्दुल्ला का खेल साहब रहमतुल्लाह से बात हो गई उनकी, तो उन्होंने मुझे पैगाम भेजा, कहते मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये इस दौर का जदीद मुनकर हदीस है, इस दौर का जदीद मुनकर हदीस है, और इसका तोड़ लाजमी है, और शबीर से कह दो कि इसका रद्द ज़रूर लिखे, क्योंकि और कोई लिखेगा नहीं, ये इसका अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, इसका रद्द ज़रूर लिखे, इसके ऊपर वाजिब है। अच्छा अब जो मैं ज़ाहिर हमारे बड़े थे, बड़ों ने ये बात की, मैं क्या करता। खैर मैंने फिर लिख लिया, ज़ाहिर मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका था। तो मैंने जब लिखा तो मैंने उनको बताया, यूसुफ साहब को, फिर उनके भाई को भेजा, कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, अब आप जो है ना ले आए सामने। मुझे सिर्फ मसला ये था कि मैं कहता हूँ कि एक नया फितना खड़ा ना हो जाए, क्योंकि मुझे अब गांधी का कोई तारुफ उस वक्त नहीं था, ना उस वक्त इतना ज़्यादा मशहूर था, तो मतलब ये कि उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा इसका पता नहीं था, लेकिन बहरहाल फिक्र तो थी। तो मैंने कहा यूँ करते हैं कि इनके साथ मिलते हैं और इनको अपनी बात समझाते हैं, मुमकिन है रुजू कर ले, अगर रुजू कर ले तो फितने ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना ये, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये ओपन हो गया मामला तो बाद लोग नासमझी की वजह से फितने का शिकार हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं, मतलब यह कि इसको शाये करने के हक में नहीं था, लेकिन डिस्कशन के हक में, ताकि इनके साथ डिस्कस किया जाए। खुदा का शुक्र है कि एक आदमी मिल गया इन्हीं के इसमें इदारे में, अशराक अल अशराक इदारा जो है ना का लाहौर में, उसमें हमारे ही एक कुलीग जो पहले हमारा कुलीग था, फिर इसमें इदारे में चला गया था, उनके साथ रहा, तो हमने कहा भाई उनसे हमारे लिए टाइम ले लो, और हम उनके साथ बात करना चाहते, टाइम नहीं दिया। बहुत कोशिश की कि हम उनके साथ किसी तरीके से मिलें, लेकिन नहीं, टाइम नहीं दिया, मिलने नहीं चाह। फिर हमने कहा कि अब क्या करें। खैर, अब सब मुझे कहते थे कि नहीं आप शेयर कर दें। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अब पेशावर में गया था, वापस आ रहा था तो कूड़ा खट उतर गया कानिया, मौलाना इब्राहिम पानी इस वक्त मौजूद थे, जिंदा थे, हक्कानी अलहक के मुदीर थे, वो सीट पर थे नहीं। उनके नायब को मैंने कहा, ये मकाला है, आप ज़रा देख लें, हज़रत को दिखा दें कि ये शाद के काबिल है या नहीं, या उसको शाया होना चाहिए नहीं। जो ये मैं सिर्फ मशोरे के तौर पे, वो मैंने छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई कि मैंने इनको ये नहीं बताया कि इसको शाया नहीं करना। मैंने कहा आप इसको सिर्फ राय दे दें इस पर। दो हफ्ते के बाद अलहक दो रिसाले आ गए। उनका जी अल्लाह बस बच, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमने अलहक में उसको छाप दिया है और ये दो रिसाले आपको भेज रहे हैं। अब तो पर चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। अब मैंने कहा भाई बस अब तो शाया होगी, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, फिर उसके बाद तो अलहसन वालों ने भी छाप दिया, फिर चार चार यार वालों ने कहा जी हम भी, ये अलबैनाथ वालों ने भी। अलगरज ये कि फिर हमारे हाथ से निकल गया मामला। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने किताब में अल्फाम अल्बिनास मुदल्लल में भी इसको शामिल कर लिया। मैंने कहा अब तो मजबूरी है, अब क्या करें, क्योंकि शायद तो हो चुका है, लोगों को पता तो चल गया है, लिहाजा फिर मैंने शाय कर लिया। तो ये है कि ये जितने भी मुल्हिदीन लोग होते हैं ना, ये शोशे छोड़ते हैं और अपने रसूख से काम लेते हैं। अब जैसे गांधी को भी प्रोजेक्शन बहुत मिलती है, यानी वो जो मीडिया के ऊपर जो प्रोजेक्शन है जितनी उनको मिलती है, वो किसी और को तो नहीं मिलती आज। तो इसी वजह से ज़्यादा मतलब है कि वो उनकी बातें लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो बहरहाल इसी तरह की इस बात यहाँ पर भी हुई है। फ़लसफ़ी ने कहा जो इनकलाब के, अच्छा सॉरी, ये हुकमा के नज़दीक आलम कदीम ज़मानी है जिससे पहले कोई अदम खारजी नहीं। यानी ये बात नहीं कि आलम किसी वक्त खारिज में मौजूद नहीं था फिर मौजूद हो गया। हाँ, फिर अगर आलम के लिए हदूस है तो हदूस ज़ाती है, जिसके इसका मकसद कि आलम से पहले अदम मरतबा ज़ात अक्ल में है, न कि न खारिज और वाक़िया में है, और आलम के वाजिब की तरफ मोहताज और मखर न लहज़ अकाले में, जैसे हाथ और कलम की हरकत, कि कलम की हरकत अपने वजूद में हरकत हाथ के मोहताज है, और लिहाजा अकल में इससे मुताखिर भी है, क्योंकि तेईब जमान इससे मुतावन। ये मुश्किल मुश्किल फाज है, मतलब है कि मकसद ये है कि इसको कहते हैं मादूमात, यानी मतलब यह कि सबूत मादूमात जिसको हम कहते हैं। यानी आप कुर्सी अगर बनाना चाहते हैं तो आपके जहन में कुर्सी का नक्शा होगा कि मैं इस तरह कुर्सी बनाना चाहता हूँ। ये जो आपके जहन में है ना, ये इसका सबूत है, उसका हकीकत है। और बाद में जब कुर्सी वजूद में आएगी तो ये उसका मतलब जाने खारिज में मौजूदगी वजह खारिज में वजूद हो जाएगा। तो ये चीज़ को मतलब हजरत बयान फरमाना चाहते हैं कि जो हदूस है हाँ जी, वो असल में खारिज में आने को कहते हैं, लेकिन मर्तबा सबूत में तो पहले से मौजूद है, अजल से। मर्तबा सबूत में अजल से मौजूद, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानु अलीम है और अलीम का अजल से है, लिहाजा अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया तो अल्लाह ताला को तो उसका पता था कि मैंने क्या बनाया। हाँ जी, लिहाजा वो तो सबूत के तौर पे तो पहले से मौजूद है, लेकिन बाद में वजूद में खारिज में आया है, यानी बाद में अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया, पैदा फरमाया। और खारिज से मुराद ये है कि यानी हम लोग इसको यानी मतलब देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो ये वजूद है। असल में मरतबे तख्लीक में इसको हादिस कहते हैं, मरतबे तख्लीक में इसको हादिस कहते हैं। यानी मतलब ये है कि मा खलकता हादा वातिला, तो खलकता से पता चल गया कि पैदा किया, और बातिल से मुराद ये है कि वैसे नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मौजूद है सब मतलब, लेकिन इसकी जो मौजूद है बिल असल नहीं है। ये जो है ना, वो असल में इरादे से, अल्लाह ताला के इरादे के साथ है। यानी अल्लाह पाक हकीकत उसका वजूद है, हकीकी वजूद है, और इसका वजूद जो है ना अल्लाह पाक के इरादे के साथ है। अलबत्ता हम लोग का जो इरादा होता है वो और होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई चीज़ सोचता हूँ तो जितनी देर मैंने उसको सोचा है वो कायम रहेगा, फिर जब उसमें मेरे सोच ख़त्म है तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक चूँकि कादिर है तमाम चीज़ों पर, लिहाजा ये अल्लाह जल्ल शानू के इरादे के साथ कायम और मुस्तकर है, मतलब वो करार पाया हुआ है, जब तक अल्लाह चाहेगा तो ये होगा। तो ये मतलब उसकी बात है। तो ये तमाम जाते मतलब इस अंदाज़ में मुतकलमीन का ख्याल है कि आलम हादिस महदूस ज़मानी नहीं, यानी एक वक्त ऐसा कि आलम मौजूद नहीं था फिर पैदा हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़ाहिर मतलब है कि खारिज में नहीं था। इसका मतलब क्या है? खारिज में नहीं था। जो है ना वो सूफिया कहते हैं कि आलम हादिस है मगर हुदूस ज़मानी है, जैसे कि मुतकलमीन का ख्याल हो, नहीं हुदूस ज़ाती है जैसे कुमा का ख्याल है, बल्कि इन दोनों के मावरा एक ऐसे हुदूस के साथ जो बाकी और नफ्सुल अमरी है, यानी आलम अपनी ज़ात के एतबार से खारिज में मादूम है, वो सिर्फ फैज़ हक और काबिलियत अयान के साथ मौजूद है, जैसे अशकाल सूरतें जो अपनी ज़ात में तारीख है और इनकी नुमाइश नूर आफ्ताब की फैज़ और नूर चश्म के कबूल के साथ होती है। यानी अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात अपने खुद ही के साथ मौजूद है, और ये जो है ना अल्लाह ताला के इरादे के साथ मतलब जो है मतलब मौजूद है। अगर दोनों से में से एक नूर मफकूद हो तो वह अशकाल वलवान थिर और नापीद हो जाते हैं, क्योंकि फाज़ हक और काबिलियत व यानी दायमी है। बस आलम तो ज़मान कदीम हुआ, लेकिन जब ज़ात आलम पर निगाह करें तो अशा का वजूद अदम के बाद हुआ, बल्कि अशा हर आन में हादस होती है। मतलब यह है कि यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर उसको यानी कोई कि वजूद हम इसको भी कहते हैं, बल्कि मुजद साहब रहमतुल्लाह अक्सर फरमाया करते हैं ज़बान की तंग दामानी। ज़बान की तंग दामानी से मुराद ये कि अल्फाज नहीं है, यानी हर चीज़ का हक अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। तो उस वजह से हमें एक ही लफ्ज़ को अगर कई मानों में इस्तेमाल करना पड़ जाए तो लोगों को परेशानी तो होगी। अब एक वजूद ही एक लफ्ज़ वजूद है जो ज़माने के लिए भी यानी वो आलम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल कर रहे। अल्लाह भी मौजूद है, कायनात भी मौजूद है, तो क्या दोनों एक तरह मौजूद है? दोनों एक तरह तो मौजूद नहीं है ना। अल्लाह जल्ल शानु अपने खुद ही के साथ मौजूद है बगैर किसी और के इरादे के, और जो है ना वो कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला के इरादे के साथ मौजूद है। अब यूँ कह सकते हैं कि मैं तरफ समझाने के लिए अर्ज करता हूँ, ये सिमुलेटर होता है। सिमुलेटर सिमुलेटर से मुराद ये है कि जैसे कोई ड्राइविंग सीखता है तो वो ऐसा मशीन होता है कि उसके ऊपर वो बैठ जाता है, उसमें स्टेयरिंग भी होता है, ब्रेक्स भी होते हैं, एक्सीलरेटर भी होता है। अच्छा पूरा मतलब जो विंड स्क्रीन के ऊपर जो 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 बटन्स वगैरह सारे मौजूद होते हैं, चाहे वो जहाज़ के लिए हो चाहे गाड़ी के लिए हो। अच्छा, और इंटरनेट के ऊपर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, इंसान देख सकता है। अच्छा, अब यह है कि उसके ऊपर आदमी बैठ कर बाकायदा जैसे कोई जहाज़ चला रहा हो, तो इस तरह वो जहाज़ चला सकते हैं, और सामने बिल्कुल तमाम चीज़ें आएंगी जो जहाज़ के सामने आती हैं, और जहाज इस तरह जाता हुआ आपको स्क्रीन पर महसूस होगा, इस तरह गाड़ी भी आपको स्क्रीन पर जाते हुए महसूस होगी। आप समझे कि जैसे एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, दूसरी गाड़ियाँ भी आ रही होंगी सामने, दरख्त भी आ रहे होंगे, लोग भी आ रहे होंगे, आपने उसे बचने बचाना भी है, और जिस वक्त आप गलत गाड़ी चलाएंगे और किसी के साथ एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट का भी आपको पता चलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सीडेंट होगा। हाँ जी, वो मतलब वो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको पता चल, आपके नंबर गिर जाएंगे, नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा एक्चुअल एक्सीडेंट तो नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट आपको नज़र आएगा बाकायदा, धड़ाम आवाज़ भी आएगी। मतलब जो जैसे मतलब एक्चुअल एक्सीडेंट होता है, इस तरह सारी चीज़ आप देखेंगे। हाँ जी, तो अब ये जो चीज़ है, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ है ये भी मौजूद है, और जो सिमुलेटर पे आदमी ड्राइवर के तौर पर या पायलट के तौर पे बैठे हो ये भी मौजूद है। क्या दोनों एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे तो नहीं है ना। अब ये जो सिमुलेटर वाला है ये उसके अंदर तमाम तब्दीलियां कर सकता है, हर चीज को तब्दील कर सकता है, यानी अपने इरादे के साथ तब्दील कर सकता है, जबकि वो चीज़ें इनमें से यानी उस सिमुलेटर के जो चलाने वाले उसके अंदर कोई तब्दील नहीं ला सकता, एक चीज़ भी तब्दील नहीं कर सकता। तो इस तरह अल्लाह जल्ल शानू कायनात के अंदर एक एक चीज़ को तब्दील कर सकता है, उसके इरादे से पैदा हुआ है, लेकिन कायनात की कोई चीज़ अल्लाह ताला के पर ज़रा भर भी असरअंदाज नहीं है। हाँ जी, तो ये गोया कि यूँ समझ लिया कि ذرا جدید طریقے سے نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ماشاء اللہ اس میں سمجھ بات آ سکتی ہے. اچھا واضح ہو کہ اگر عالم کو قدیم مانا جائے تو اس کی صورت موجودہ اور حیات حاضرہ دائمی و ابدی بھی ہو, جو قیامت و حشر کے عقیدہ سے معارض ہے. لہذا صوفیہ کے مسلک پر شبہ وارد ہوتا ہے کیونکہ اس حد تک حکما کے مذہب کے مشابہ ہے جو حشر و نشر کے منکر ہے. چنانچہ اوپر کے بیان سے واضح ہو کہ صوفیہ قدم عالم کے قائل ہے, ان کے کلام سے کئی صراحتاً کئی کنایتاً یہ بھی مفہوم کہ موجودہ عالم کے دام کے معتقد ہیں, مگر یہ خیال بظاہر تعلیمات شرع کے ساتھ اجنبیت رکھتا ہے. تاہم لازم ہے کہ ہم صوفیہ کے مطالعے کسی بدعنوانی کو راہ نہ دے. حضور ہم جب یقین رکھتے ہیں کہ لوگ سواد اسلام کی ایک برگزیدہ جماعت ہے, وہ عشق و محبت کے عق کے امین ہیں اور منزل سلوک عرفان کے نجوم میں تتائن ہیں, تو یہ ناممکن ہے کہ حکمہ مثال کے عقیدے کے موافق عالم کے ذلی تو ابدیت کے قائل ہو, بلکہ عقیدے کہ جب وہ عقیدے دینیہ کے صحیح مسئلے پر قائم رہتے ہوئے اپنے ذوق وجدانی مسائل کو دائرہ بیان میں لاتے تو مسائل کی تحقیق بعید العقیل اور محتاج تعویل ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ حدوث و قدوم کا مسئلہ اتنا نازک پر خطر ہے جو کہ ذکر و بیان ثقالت کا متحمل نہیں ہو سکتا. اصل میں صوفیہ میں بھی ہر ایک کا ایک جیسے رائے تو نہیں ہے. اب مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مطلب وہ بالکل مختلف ہے حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے. اس کی وجہ کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ کے سامنے جن لوگوں کو جواب دینا تھا وہ اور تھے, اور حضرت مجد الثانی رحمۃ صاحب کے سامنے جن لوگوں کو جواب دینا تھا وہ اور تھے. تو ہر ایک نے اپنے اپنے طرز پر بات کی ہے. اگر گہرائی میں دیکھے تو ساری باتیں ایک ہوتی ہیں, لیکن اس سے سامنے جو بات آتی ہے وہ ہر ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا. اس نے گہرائی میں کوئی جا نہیں سکتا ہر ایک, تو اس وجہ سے محسوس کرتا ہے کہ شاید مطلب جو ہے نا وہ یہ دونوں مختلف باتیں ہیں. ایک بات, دوسری بات ہے کہ قدیم والی بات جو ہے نا انہوں نے جو کہی ہے تو بالعلم قدیم ہے نا, اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ قدیم ہے. خارج میں تو قدیم نہیں ہے, وہ تو نہیں مانتے کہ خارج میں بھی قدیم ہے. خارج میں تو قدیم نہیں ہے, وہ تو اللہ پاک ہمارے حضرت میں وہ سب صوفی ہے نہیں ہے. کوئی مانتا ہے صوفی ہے نہیں مانتا, یہ دے لو بھائی بشتی زبر ابھی پتہ چل جائے گا. ہاں جی, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہیں, اور اتنے بڑے صوفی ہیں کہ خود فرماتے تھے کہ حالانکہ ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, لیکن فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی اور کام لوگ نہ لیں کیونکہ اس کے لیے لوگ موجود ہیں, مجھے صرف تصوف کے لیے چھوڑ دیں. تو ایسے بڑے صوفی ہیں. تو انہوں نے جو بشتی زیور لکھا ہے اس میں پہلا عقیدہ کیا تھا بتا دیں, تمام عالم بالکل ناپید تھا پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا. چلو اب صوفیہ کا عقیدہ کیسے ہے کریم کا صاحب سامنے, اگر کوئی اور بات ہو تو بتا دے کوئی. ہاں جی, نہ مجھے صاحب نہ یہ بات کرتا ہے, تو مجدد صاحب بھی مجدد ہے تصوف میں, شاہ اللہ رحمہ سے بھی یہ بات نہیں کرتے, تو یہ کون صوفی ہے جو اس طرح بات کرتا ہے؟ اور اگر یہ صوفی نہیں تو پھر صوفی کون ہے؟ ہاں جی, تو میں تو خیر تو صوفیوں کے اوپر بہتان ہوگا مطلب اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے ان کو اصل میں اس میرے خیال میں شاید حضرت کو یہ مسئلہ جو ہوا ہے وہ وحدت الوجود کے مسئلے سے ہوا ہے. وہ تو ایک حال ہے, کیفیت ہے, اس کیفیت میں انسان معذور ہوتا ہے, وہ معذور ہوتا ہے. تو معذور مطلب معذور کا حکم تو کسی پر نہیں لگایا جا سکتا. ہاں جی, تو یہ اصل میں مطلب یہ کہ اصل جو بات ہے کہ جو علماء ہیں صوفیہ کے وہ سب مانتے ہیں کہ عالم پہلے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ پیدا ہوا, اس لیے اس کو حدوث عالم کہتے ہیں. ہاں جی, فلسفی نے کہا وہ تو انقلاب کا ذرہ بھی نہیں ہے, تجھے حدوث آفتاب کی کیا خبر. یعنی فلسفی نے اچھا سنی سے تنزن کہا کہ تو خود ایک ذرہ کے مثل بھی نہیں ہے, بس تو اس عالم کے حدوث کو کیا جان سکتے جس سے تجھ کو اس سے بھی کم نسبت ہے جو ذرہ کو آفتاب سے ہے. مطلب یہ کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں نا, حالانکہ ان کا علم سارا جو عالم کے بارے میں, عالم سے مراد یہ ہے کہ ایسٹرو فزکس یا ایسٹرانومی, وہ جو علم ہے وہ سب انڈائریکٹ علم ہے. डायरेक्ट इल्म नहीं है। मुझे बताओ, एस्ट्रोफिजिक्स में किसी सितारे के बारे में इतने तफसील के साथ किताबें लिखना, कोई सितारे पे गया किसी भी सितारे पे? या जा सकता है? भाई सबसे करीब तरीन सितारा हमारा सूरज है। सूरज तो खैर बहुत बड़ी बात है, उस तक पहुंचना वो तो सवाल भी नहीं हो सकता। सूरज के करीब तरीन जो सैयारा था अतारद है, उसके बाद सैयारा है जोहरा, उसके बाद जमीन है। तो जोहरा तक कोई जो जो गया रॉकेट गया है, तो उसका जो मैसेज मिला है, मैसेज जो मिला जैसे वो पहुंचा है, तो मैसेज मिला कि मैं पिघल रहा हूं, और बस इसके बाद रहा मैं तमन कहते हो गया। वो इतना गर्म है जोरा कि जोरा पर कोई नहीं रह सकता। अतारत जो ज्यादा करीब है वहां पर, और फिर सूरज तक खोद कैसे कोई जा सकता है? तो जाहिर मतलब गया तो कोई नहीं है, तो उन्होंने अंदाजे लगाए ना। तो सारे इलम उनका अंदाजों का है, अंदाजे ठीक भी हो सकते गलत भी हो सकते। तो बहरहाल हम उनको गलत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर अकेले में और बगैर सबूत के तो हम लोग इनको छेड़ भी नहीं सकते। लेकिन ये भी तो अंदाजे न लगाए ना फिर, यानी मतलब है कि दूसरों को नहीं छेड़े ना। जिस तरह ये मतलब ये है कि इनको हम नहीं छेड़ते कि चलो जो उन लोगों ने रिसर्च किया है, तो हम इसको ये भी नहीं कहते कि गलत है, ये भी नहीं कहते कि सही है। ला नुसद्दिकु वला नुकज्जिब, इसराइली रवायत की तरह ला नुसद्दिकु वला नुकज्जिब, मतलब हम इनके तकजीब भी नहीं करते, हम इनकी तस्दीक भी नहीं करते। तस्दीक के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, तस्दीक तकजीब के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, और वो हमारे पास नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अच्छा हुसैन के तौर पर कि ठीक है जी ये जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों को भी छेड़ना शुरू कर लें। अच्छा, जो कीड़ा पाखाना में रहता हो वो ज़मीन की इब्तदा में था को क्या जान सकता है? यानी कि तेरी मिसल नजासत के कीड़े जैसे, जैसे वो ज़मीन के पैदाश और अंजाम को नहीं समझता, सर तू भी ये सुनी तगैर तब्दुल तहवले हालात कायनात को नहीं समझ सकता। अच्छा, ये इसके हादिस हादिस होने की तेरे पास क्या दलील, वरना खामोश है ज़्यादा बात मत करो। ये कौन कह रहा है? फलसफे कह रहा है, देरी कह रहा है। ऐ सुनी तूने तकलीदन बाप से जो कुछ सुना अपने बेवकूफ़ी से इसमें पनस हुआ है। फलसफे ने कहा नादान तू अंधा मुकल्लद है, मैं समझ गया तूने जो कुछ सुना अपने नादानी उत्कलित फाम से उसका कायल हो गया। और ऐसा नहीं, तू इस हदूस आलम के हदूस के दलील कायम कर, अगर दलील कायम नहीं कर तो चुप रहे और फजूल बातें न कर। प्रेशर डाल रहा है। हाँ जी, सुनने जवाब दे कि मैंने दो दोस्तों में से इस गहरे मसले पर गुफ्तगू करते हुए देखा है। फलसफी से सुनी ने कहा मैं इतना जानता हूँ कि इस गहरे संबंध में मसले उदूस कदम के बारे में दो शख्सों में बहस हो रही थी, जो कि दोनों अपने अपने दलायल बांध रहे थे। इस झगड़े का सबसे मुश्किल पहलू फैसला था। वहाँ एक लोगों का इकट्ठा हो गया, मतलब लोग जमा हो गए। लोगों का एक जमघटा था, कान पड़ी आवाज़ सुनाई दी थी। हर दोनों का फैसला होना मुश्किल था कि किसके दलायल बुरहान दुरुस्त और किसके नादुरुस्त, और कौन हक पर और कौन बातिल पर है। मैं विसंगामा की तरफ गया ताकि सूरत हाल से वाकिफ हो जाऊँ। मैं भी एक हंगामे का एक फर्द बना, उनके सूरत हाल से आगाह हुआ। एक ने कहा कि आसमान फना होने वाला है, बिलाशुबा उसका कोई बानी भी है। जो शख्स कायनात के फना का ख्याल था वो कह रहा था कि ये जहां और जो कुछ भी इसमें फना होने वाला है, और ये बनफ्स ही मौजूद नहीं है, बल्कि इस इमारत का कोई बनाने वाले जिसने उसे बनाया है। दूसरे जो फना का ख्याल नहीं था, कहा कि जहां कदीम है इसका कोई बानी नहीं बल्कि खुद ही मुकीम है। दाहिर ने जवाब दिया कि तू गलत कहता है, जहाँ कदीम है इसकी कोई इब्तिदा या इंतहा नहीं है, और नहीं उसका कोई बनाने वाला है, और कोई बानी है तो खुद ही है। हासिल है कि जहाँ जहाँ बेनफसी मौजूद है दूसरे के सहारे से मौजूद। देखो ना हमारा बुनियादी फ़र्क क्या है, अल्लाह ताला अपने खुद ही के साथ मौजूद है, और बाकी चीज़ों का अल्लाह ने पैदा किया है। हमारा अकीदा ये है ना, तो इनका अकीदा क्या है? इनका अकीदा कहते हैं आलम जो है, जो कायनात है वो बज़ात खुद मौजूद है। हाँ जी, किसी और ने उसको नहीं बनाया और कदीम से चला आ रहा है। सुनने का क्यों कर तो मुनकर हुआ आप? हाँ जी, और रोज़ शब के खालिक का और रजाक का फलसफे ने कहा मैं बगैर दिल कोई बात नहीं सुनना चाहता, जो कुछ तूने कहा ये महज तकलीर है। सुनने कहा ये क्या गजब है कि खालिक आलम और रात और दिन में तसल्लुफ रखने वाले और रजाक का तो इनकार करते हैं। जिस पर फलसफे ने कहा अगर तुम खालिक आलम और मुसरफ जमान और रजाक के वजूद का दावा करते हो उसकी दलील बयान, क्योंकि मैं बिदून दलील के तुम्हारा बयान नहीं सुन सकता हूँ, नहीं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, इसकी तुम्हारे तरह तकलीदन कबूल कर सकता हूँ। अगर इसका वजूद खालिक की कोई दलील है तो बयान कर, वरना बगैर दिल की एक बात जमाने में भी काबिल कबूल नहीं। यानी अगर तुम मुझको अपना ख्याल बनाना चाहते हो वजूद बारी पर कोई दलील पेश करो, क्योंकि मैं तुझे कह चुका हूँ बगैर दलील बुरहान की किसी बात को मैं कबूल नहीं करता और नहीं आप मुझे कायल कर सकते हैं। सुनने कहा कि इसकी एक दलील मेरे दिल में है, इस जान के अंदर वो बुरहान पोशीदा है। मैं दावा के खुद ने खुद मेरी जान में वो जान के अंदर वो बुरहान मख्फी है। मकसद है कि मैं आलम के हदूस को वजदानी और जोक के तौर पर जानता हूँ। अच्छा कि भाई अगर तू आंख की कमजोरी से चांद को न देख सके तो मुझ पर क्यों कर खफा होता है, यानी तू नहीं जान सके उनको दलील इतने लतीफ़ और नाजुक है जैसे पहले शब का चांद। अगर तेरे जैसे कमज़ोर आंख वाले उसको न दे सके तो नहीं मतलब जामद का वो नहीं मेरा जुर्म है, क्योंकि तेरी चश्म बातन कमज़ोर है इसलिए तू कायनात उसको नहीं देख सकता मगर मैं देखता हूँ। अब देखिए आगे बात आ गई। दहरिया मुतलकन सान आलम के मुनकर है और फलासफा सान मुख्तार के मुनकर है। ये मतलब ये कि फलसफी जो है ये क्या है जो उस बनाने वाला है उसके मुनकर है। चूंकि सुन्नी ने हुदूस आलम पर अपनी विजदानी दलील पेश की थी और वही दलील साने के लिए भी थी कि मन अरफा नफ्स फ़कद अरफा रब, जिसने अपने नफ्स को पहचान उसने अपने रब को पहचान लिया। मुनकरीन का ख्याल है कि इन तगैरात से दुनिया का हदूस साबित नहीं होता, बल्कि जहाँ हमेशा से ये जुमला हवाले साथ ख्वाही न ख्वाही परवरदिगार की तरफ मंसूब करना हमाकत और कुराना तकलीद है जो बालों की आबाई वरसा से मिली है। तुम्हारे कहना लिलनहार के तयुर तबदल मौसम के तगर से नबादात पर ख़जान व बहार का आना और नफ्स इंसान पर लहजा तगैरत का होना बार तरह के वजूद और सानी पर दलालत नहीं करता, बल्कि तो मादे के ज़ाती खवास में से खुद मादे ही इल्लत उला है। किसी खारजी और महूमी वजूद के इन तगैरत में कोई दखल नहीं है, बल्कि आलम खुद बहुत इस तरह चला है उस तरह चला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फितरत इंसानी से बईद और सबसे ज़्यादा शकी अगर है तो दहरिया फ़िरका है। अशाउल्ला रहमत फरमाते हैं इन नलसा खलक फ़ी फितरती मेला बारी जल मजदू वज़ाल कल मेल रतन तकी किला खलीफ़ती व मजनी व खलीफ़ती व मजनी वाला मजबतान सही ईमान बिन अलबात हक़ुल्ला ताला मादी لانه منعم لهم والمجازم على اعمالهم فهم الاراده وثبوتي او ثبوت الحق وللعباد او انكر المهازات فهو الدهري الفاقد اسلام الفطره لانه على نفس مزنه المال فطر المودر في جبلتي ونائب خليقتي انسان کی فطرت میں بات پیدا کی کہ وہ اپنے باری تعالی کی طرف مائل ہو اور یہ میلان امر دقیق ہے جس کا تصور تمسس کی خلقت اور مزنت ہی ہوتا ہے اس کی خلقت اور مزنت جیسا کہ وجدان صحیح سے ثابت ہوئی یہ ہے کہ اسے یقین کامل ہو جائے کہ بعد اللہ تعالی کہا کہ جو اس کے بندوں کی ذمہ ہے کیونکہ ان کو انعام بخشنے والا ان کو اعمال کا بدلہ دینا پر جو شخص ارادہ کا منکر ہو یا بندوں کے ذمہ اس کا حق ہونے کا انکار کرے یا جزائے اعمال کو تسلیم نہ کرے وہ داری ہے جس نے اپنی سلامتی فطرت کو کھو دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کے مزن میل فطر کو خراب کر دیا جو اس کی جبلت میں ودیت کیا گیا تھا اس کا نائب خلیفہ تھا۔ شاہ صاحب دوسرے مقام میں مزید وضاحت فرماتے ہیں یعنی سب سے بڑی بدبختی انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ دھاریہ ہو اور دھاریہ کے کہتے ہیں کہ ان علوم فطریہ کے برخلاف چلے جو قدرت نے اس میں ودیت رکھے ہیں، اور ہم بیان کروں کہ اس کے اندر اپنے باری تعالیٰ کی طرف ایک قدرتی میلان ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں اس طرف اشارہ ہے۔ برزنیف اور یہ کوسی جنتا شاید آج امریکہ کا جو صدر، ये एक जगह बैठे हुए थे और एटमी हथियारों की के महदूद करने पर ये कोई मुआहदा करना चाहते थे कि हम इनको कम करें कि लिमिट करें, क्योंकि अगर ये शुरू हो गया तो कायनात फिर क्या दुनिया कोई नहीं रहेगी। तो आपस में मुआहदा करना चाहते थे तो ब्रेजनेव इसका बड़ा हामी था। तो ब्रेजनेव ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, मतलब ये तो दे रही है नहीं मानते। तो बातों बातों में दलायल देते हुए ब्रेजनेव की ज़ुबान से निकला हमें ये मुआहदा ज़रूर करना चाहिए वरना खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें खुदा माफ़ नहीं करेगा। कोसी जो उसको देखते रह गया था, अच्छा आपको खुदा याद आया, आपको खुदा याद आया, तो इसका मतलब फित्री मिलान है ना, फित्री मिलान है ना। सिर्फ ये कि हमने उसको दबाए हुआ है, वरना मौजूद तो है। अच्छा, न्यूटन जो मशहूर साइंसदान है, इसका एक दोस्त था जो देहरी था, ये तो ईसाई था। तो उसका वो दोस्त देहरी जो है ना, वो आया था उसके साथ मिलने के लिए। तो इसने अपने क्लास के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सोलर सिस्टम मॉडल बनाया था लकड़ी से, जिससे स्टूडेंट्स को समझाता था कि ये सैारे कैसे हरकत करते हैं और उसके चांद कैसे हैं। वो बाकायदा इस तरह, जिसको प्लेनेटेरियम कहते हैं, प्लेनेटेरियम मतलब उसने बनाया हुआ था लकड़ी से, बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो वो जो देहरी दोस्त था उसका, वो भी साइंसदान था, उसने कहे अपने किस से बनवाया है, मैं इसको बनवाना चाहता हूँ। न्यूटन को मौका मिल गया, उसने कहा छोड़ो यार, ये खुद बहुत बना हुआ है, इसको किसने बनाया, क्या सोचते हो। उसने कहा भाई मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं खुद बनवाना चाहता हूँ, आप मुझे उस शख्स का नाम बता दें किसने बनाया। उसने कहा भाई खुद से बने, बता तो दिया आपको, खुद से बनाए तो मैं आपको क्या बताऊँ मजीद। यार क्या मजाक करते हो मेरे साथ, मैं सीरियस आदमी हूँ, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई किसने बनाया, ताकि मैं उससे अपने लिए बनवाऊँ। उसने कहा तू तुझे एक्चुअल सोलर सिस्टम के बारे में कहता है कि वो खुद से बना है, तो ये मॉडल खुद से क्यों नहीं बन सकता है, तो उससे बहुत कम है, तू मॉडल के बारे में क्यों इतना परेशान है, खुद से बना हुआ है वो सारा पूरा निजाम, जब खुद से बने तो ये भी खुद से बना हुआ है। तो बात यह है कि वाकईतन वो जो फितरी मेलान है उसमें तो ये चीज पाई जाती है, लेकिन जो उसने अब उसको दबा लिया तो दब गया, क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत देता है मांगने पे। अफनुल जिकुम अंतुम लाकारिन, हाँ अंतुम लाकारिन। अच्छा, तो ये मतलब मुझसे इनकार करोगे, मैं तुम्हें जो है ना वो इकरात करोगे और मैं तुम्हें फिर वो करूँगा। तो ऐसी बात यह है कि हिदायत अल्लाह ताला से मांगने पे मिलती है, रिज़्क मांगने पे नहीं है, रिज़्क मुफ्त में मिल सकती है। उमा में नर्स को कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो पैदाइशी तौर पर अपत्य होते हैं, वारिस होते हैं, उनने कुछ भी नहीं किया होता लेकिन वो वारिस होते हैं। हाँ जी, तो रिज़्क के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान मेहनत करे, लेकिन हिदायत के लिए मेहनत ज़रूरी है। तो जो मेहनत नहीं करता वो महरूम रह जाता है। बात इस कदर सुन्नी उदहरी के दरमियान बढ़ गई कि लोग आसमान की इब्तदा और इंतहा में हैरान थे। सुन्नी उदहरी का मुकालमा इतना तवील हुआ कि मखलूक आसमान की इब्तदा इंतहा के बारे में कोई फैसला तसली बख्श नहीं सुन सकी, और हैरान थी कि इसके दलाई को तरजीह दे जाए। सुन्नी का जो दलील मेरे दिल में पोशीदे आसमान के उदूस पर कुली निशानी है, मेरे इस कौल के सादिक होने में कि ये निशानी है कि जिसको अपनी बात पर कामिल यकीन वो आग में घुसे। सुनने अपनी बात पर इशारा करते हुए फिर कहा, अगर तू नहीं मानता तो न मान, मगर मैं सच कहता हूँ कि मेरे दिल में इसकी दलील मौजूद है जो मुझ बहुत आसमान को वाजी करते हैं। मुझे इसको उदूस पर पूरे के जो इसको यकीन तौर पर जानता हूँ, उसकी निशानी है कि वो आग में चला जाए। अगर सच है तो आग नहीं जलाएगा और झूठ है तो जल जाएगा। मिस्र मशहूर के सांझ को आँच नहीं, मैं उसकी दलील को जुबानी बयान कर, ये मिसल इश्क के आशिकों में मख्फी है। कायनात के फना की दलील जुबानी नहीं बल्कि जो की वजदानी चीज़ है, तो मिसल इश्क है। अगर तुम किसी आशिक से सवाल करो कि इश्क को दलाए बुरहान से साबित करके दिखाओ, तो मनफी में जवाब दे देगा, अलबत्त अपने इश्क के सबूत में खारजी अलामत और निशानों की तरफ इशारा करेगा। मेरे गुफ्तगू का राज सिवाय मेरे चेहरे के जर्दियों ने कहा कि कुछ नहीं। आशिक अपने हसीन तरीन महबूब का सबूत अपने चेहरे के जर्दी जिस्म की कमजोरी में देगा कि इसका जर्द पड़ना और जिस्म का कमजोर होना मेरे इश्क और महबूब का बेहन सबूत है। मेरे रुखसार पर खूनी आंसू का जारी होना मेरे महबूब हक की हुस्न खूबसूरती के बेहन दलील है। मेरे चेहरे पर खून के आंसू के जारी होना मेरे इश्क की दलील है। लफ्जी दलील मेरे पास नहीं है, क्योंकि अमर दलील लफ्ज़ के हाथ से खारिज है। हर एक चीज़ को लफ्जन व खारजन नहीं परखा जाता और नहीं हर एक चीज़ का वजूद खारिज होता है। फलसफी ने कहा मैं इस दलील को तस्लीम करूँ जिसे आमी भी मान ले। तुमने अपनी विजदानी वजो की दिल पेश की, उसे मैं कबूल नहीं करता। तुमको इस दिल पेश करो जो एक आम आदमी भी कबूल करे, उसके जहन में आ सके। اگر تو ایسے اجرت لائے تو میں قبول کر سکتا ہوں ورنہ کیسے ختم کر دیجیے گا. اس نے کہا جناب میں ایسی بات کو نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی قبول اچھا اگر ایسی کوئی دلیل پیش کرو جس کو سب لوگ مانے تب میں تمہارا دعویٰ مان لوں گا, ورنہ ان لمبی جھوڑی باتوں کو ختم کرو, ایسے تمہارا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا. کہا جب کور کرو سنو کٹ کوٹا آپس میں ٹکرائے تو لازمن ایک دوسرے کو کرو کٹو کہیں گے. اس نے کہا سنو جب کرا اور کوٹا سنا آپس میں بحث کرے اور ایک دوسرے سے کہے کہ میں کروں اور تو کوٹا ہے, ان دونوں کے آخری امتحان آ گئے اور چاہیے کہ ان دونوں کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ ہر کا سنا کہا ان کے حال سے آگاہ ہوں, شک و گمان چھوڑ کر یقین پیدا کرے. سن نے کہا میرے نزدیک اس کا آخر امتحان ہے کہ دونوں کو آگ میں داخل کیا جائے, اس سے ان کا کوٹا کرو نہ داخل ہو جائے. یہ سونا خراب نہیں ہوتا نا اور کوٹ جو ہے جل جاتا ہے, تو انہوں نے کہا دونوں کو آگ میں داخل کرو. انہوں نے کہا کہ نئی دلیل لی کہ ایک سچ پر ہے ایک جھوٹ پر ہے, تو ایک سچ ایک کرا ہے ایک دوسرا کوٹا ہے, تو کرو کوٹے کی پہچان یہ کہ اس کو آگ میں داخل کرو, اگر آگ میں وہ جل گیا تو کوٹا ہے اور اگر نہیں جلا تو کرا ہے. اخلا دونوں نے اس پر اتفاق کہ دونوں آگ میں گھسے ہیں تو دونوں کی گلی گل جائے گی. سنی فلسفی کا آگ میں گھسنا اور فلسفی کا آگ میں جلنا. اے بھائی آگ اور پانی امتحان کے لیے کوٹے اور کرپن کو جو ان میں پوشیدہ ہوتا ہے ظاہر کر دیتے ہیں. سن نے کہا میں اور تو دونوں آگ میں گھسے ہیں تاکہ میرا اور تیرا انجام زمانے پر حجت رہے کہ میں اور تم دونوں آگ میں گھسے ہو, جو لوگ میرے اور تمہارے جمن ہیں ان پر اکتہ کل جائے اور ہم دونوں کے لیے دلیل راہ بنے, یا دونوں سمندر میں کود پڑے کیونکہ ہم دونوں مدعی ہیں. اگر تجھے آگ میں منظور نہیں تو سمندر میں دونوں کود پڑے کیونکہ ہم میں سے ایک صداقت کا مدعی, کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. الگر دونوں آگ پر اگر دونوں نے اپنے آپ کو آگ کے شعلے کے حوالے کیا, دونوں کا آگ میں داخل ہونے پر دونوں نے اپنے آپ کو سورج اثر کے حوالے کیا, فلسفی جل کر خاکستر ہوا اور متقی محفوظ اتر تازہ ہوا, خدا کا ماننے والا مدعی بچ کے اور اس کا انکار کرنے والا جل گیا. نتیجوں کے دہری یعنی خدا کا انکار کرنے والا آگ نے جلا کر خاکستر ڈھیر کر دیا اور خدا کے اقرار کرنے والے کو آگ ایسی راز آئی کہ پہلے سے بھی زیادہ خوشخبر مل رہا ہے. بس خدا کا قائل و دنیا معافیا کہ ماننے کا فنا کا ماننے والا بچ نکلا اور خدا کو نہ ماننے والا جہاں کو قدیم و غرفانی تسلیم کرنا موت کی گھاٹ اترا. قدرت نے چیز اس قسم کا برآمد ہو کہ حدوث کے ماننے والوں کو بھی تحیر میں ڈال دیا کہ جو شخص فنا کا قائل تھا وہ بچ نکلا اور جو دوام کا قائل تھا وہ بری طرح ہلاک ہوا. الٹ بات ہوئی, دوام مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا, تو جو اس کا قائل تھا تو وہ جل گیا اور جو فنا کا قائل تھا وہ بچ گیا. مدعی حدوث عالم کا نام بھی موت سے نہیں ٹلتا اور ہزاروں جانے ان کی دلدار متی ہو گئے اور سہرہ بخیر میں لاکھوں مخلوق کا سردار بن کر ان کو اس جنگل سے نکال کر لے گیا اور لاکھوں بیساؤں کے لیے موجب عافیت بن گیا. اس طرح اس مارے کمیں ان کو نمایاں فتح حاصل ہوئی اور دوام بقا کے قائل کا نام صفیستی سے نقش براب کی طرح مٹ گیا. حق سبحانہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے مارے کاراؤں کے بے شمار امثال اپنے کلام میں بیان فرمائیے. ان کے کوٹ اور زے پر وہ فرمائے جب کفار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط رکھی تو حق ہی غالب آیا, اس طرح آپ کے معجزات دائم رہے اور مخالفین کی کاروائیاں فنا ہو گئیں. عزم و ازن بشنو ای اعلام را کو برے افزو روان خامرا کہ نہ سوزے سن کے نہ سوزی داست ای نام از اجل کشم سما صدر بودا استجل صد ہزارہ زیدہ اندر قرآن بردریدہ پردہائی منکراں صد ہزارہ روح شد دل دادئی در رہے او سر بسر افتا دئی صد ہزارہ خلق اندر بادیا سچ گو بے اصا اور راویاں چوگرد بستند غالب شد ثواب در دوا میں معجزات و در جواب فاب کردم کا کے دم زد از سبق در حدوثی چرخ پی روز است حق حجت منکر ہمارے زور دو یک نشا بر صدق ای انکار کو یک منارہ در سنائے منکران کودری عالم کی تاباشد ایام سکہ شام امی گردد دگر سکہ یا حمد ببیتا مستقر ممبرے کو قدر انجام مخبرے یاد آرد روزگارے منکرے روئی دنیا روئی دنیا روم و از ناموشی تا قیامت میداد از حق نشین پر رخ نقرایا روئی زرے ورنما برسک کے نام منکرے خود بگیری معجزائے چو آفتاب سد زباب و نام و امل کتاب زہرہ نے کسرا کیا حرف ازاں یا بدزو یا فضائے درمیاں یار غالب شو کہ تو غالب شوی یار مغلوب آم شو تو اے غوی حجت منکر ہمی آمد کے من غیر ای ظاہر نمی بینم وزن ہیچ نندیشد کہ ہر جا بزا ہر جا ظاہری است آج حکمت ہے پنہا مخبری است فائدہ ظاہر خود باطن است ہم چو نفع اندر دوا کامن است اتفات حق نہاد اندر زمان تابدان آل عرفان در جہاں عمر کرگس صد ہزار و پانچ صد است مر کبوتر راچ باشد زابد است می بری رد از کبوتر صد ہزار مرگ کرگس را نبی ند آشکار جملہ پندارند کرگس باقی است نی غلط کردند یا کس باقی است چونکہ ظاہر بی شدن از جوہر خویش می نبی نند از جم از امینا پس نپیش می نماد در جہاں یک تارمو کل شاین حالکن الا وجہو وما خلق نسم الدما بین اللہ بالحق. اچھا مدادی کرنے والے کا اعلان سنو کہ خدا کو الگ کرے کو متقی کے نام کو موت بھی نہ مٹا سکے کیونکہ نام والا کتنے بزرگ تھا. لاکھوں یہاں کو باطل کے فیصلوں کی شرط قرآن میں جن پر منکروں کا پردہ چاک ہوا لاکھوں روحیں اس پر فدا ہوئی اور ایک کا سر ان کے آگے جھک گیا لاکھوں انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں جھگڑے مگر سب کفار میں دست و پاؤ کر رہ گئے. رسول اللہ علیہ وسلم سے کوئی شرط باندھی تو حق ہی غالب رہا کہ معجزات دائم رہے اور مخالفین کی کاروائیاں فنا ہو گئی. بس اب میں سمجھا جس نے اس قصہ سے عبرت حاصل کی کہ آسمان حادث ہے وہی حق پر ہے. یہ مولانا فرماتے کہ جب میں نے پیشتر کہا تھا کہ آسمان اور جو کچھ اس میں جملہ فانی ہے وہ غالب اور حق پر تھا. اب مولانا فرماتے کہ فلسفی مغلوب ہو گئے اور اس کی دلیل حجت رسوا و بیکار ثابت ہوا. حق ہمیشہ غالب و بلند رہا ہے. منکر حق کی دلیل بیکار ہو گئی. بلا زمانہ میں کب اس کے قول کی تصدیق ہوئی تھی. منکران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر کوئی منارہ دنیا میں ہو تو دیکھا ہو. منکر حق کی دلیل ہمیشہ مغلوب ہوتی ہے کیونکہ اس کے انکار کے سچے ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی. جو سرسبز شہداد و منکر کی دنیا میں کوئی ایک بھی یادگار نہیں ہے. دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ابو جہل ابو لہب وغیرہ کا ایک نام بھی کا ایک بھی نام لیا باقی نہیں. اب ذرا میں تھوڑا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل بتاتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا تو یعنی خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو میں تو مانتا ہوں. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا. اس نے کہا تیری قسمت ہے. بہرحال اگر نہیں ہے یہ صرف ان کو شک والی بات نہیں ہے, صرف سمجھانے کے لیے. اس کو الزامی دلیل کہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو مجھ سے کون پوچھے گا کہ تو نے کیوں مانا اور تجھے کیا انعام ملے گا کہ تو نہیں مانا. اس میں تو ہم برابر ہیں. لیکن اگر ہے تو میں تو بچ جاؤں گا کیونکہ میں تو مان, تو کیا کرے گا. تو ان سے فرمایا کہ سیف سائڈ پر کیوں نہیں رہنا چاہتے, کیوں محفوظ نہیں بننا چاہتے. تو اس کو بات سمجھ آ گئی. یعنی سانے کو مانو نہ سانے کو, یہ تو عقلی طور پر مانا جا سکتا ہے کہ کوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کو بالکل ہی تبلیغ نہیں پہنچی اسلام کی کسی طریقے سے, اگرچہ آج کل ایسا ہونا مشکل ہے, لیکن کسی کو بالکل ہی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, اس سے اللہ تعالیٰ صرف اتنے مطالبہ کرے گا کہ وہ کسی پیدا کرنے والے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر وہ اتنی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی نجات اس پر ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں جی, کیونکہ یہ بات عقل سے بھی انسان جان سکتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے سب چیزوں کا. یہ نہیں کہ بغیر اس کے یہ ساری چیزیں خود بہت بن جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ بات کی باتیں تو پیغمبر کے ساتھ متعلق ہے کہ پیغمبر کی اگر کسی کو پہنچی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحیح بات بتائی ہے ہر ایک کو کہ جو چیز جس درجے میں ہے اس درجے میں بتائیے. फिर सारी चीज़ें इंसान के ऊपर हुज्जत हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही दावत नहीं पहुंची, तो ये जो दावत अंदर जो हज़रत ने फरमाया कि मेरा अंदर है, कम अज़ कम इसको कोई दबाया ना हो, किसी ने दबाया ना हो, तो बच जाएगा। उसकी वजह कि इतनी बात हर एक के अंदर फितरत में है कि मेरा कोई पैदा करने वाला है। मुनकर रसूल अल्लाह की तारीफ में अगर कोई मुनारा दुनिया में हो तो दिखाओ, जब मुनकर हक की दलील हमेशा मगलूब होती है कि उसके इनकार के सच्चे होने की कोई भी दलील नहीं हो, जो सच समझ देखो मुनकर, देख मुनकर शाही सिक्का हमेशा बदलते रहते हैं। आप सलम का सिक्का कायम उदायम है, ये दुनिया में मुल्क हुकूमत के सिक्के अदब बदलते रहते, चंद रोज किसी का नाम का सिक्का जारी हो, कुछ अरसे के बाद दूसरे का जारी हुआ, हर किसी एक के सिक्का को करार दे नसीब नहीं हुआ। बखिलाक आप सलम के नाम का सिक्का आज तक जारी है और क्यामत तक रहेगा। दुनिया का कोई खत्ता और नख्वा खुशकी हो या तरी ऐसा नहीं जहाँ कम अज़ कम 5 वक्तों का आपका नाम का मुनादी ना होती हो। किस जगह ऐसा मेंबर है जहाँ पर मुनकर हक रसूल की याद ताज की जाती हो? आप सब की तरह कोई मेंबर जिस तरह आपको याद किया जाता है, इसको भी याद किया जाए, बखिलाफ इसके कि आप मुनकरों को हर मेंबर मजलिस में बुराई से याद किया जाता है। ये देखो ना, अल्लाह पाक ने सूरह कौसर में बताया, इन्ना आतवेना कल कौसर फसल रब कौन हर इन्ना शान कवल अब तक, जो तेरे दुश्मन है वो अबतर है। काफिरों ने आप सजम को अबतर मशहूर किया था कि इनकी औलाद नरीना नहीं है, लिहाजा ये बस सिर्फ चंद दिनों तक है, फिर इसके बाद का कोई नहीं नाम लेवा नहीं होगा। तो अल्लाह पाक ने पहले से फरमाया कि जो ये से कहते हैं वो अबतर होंगे, तब देखो उनके मुखालिफिन का क्या रह गया। अबू जहल की टट्टियां रह गई, ये अबू जहल का जो घर था ना, उसको सऊदी हुकूमत ने वो बनाया हुआ है, वहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं, तो उसको अबू जहल की टटियाँ कहते हैं। मैं कहता हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन आप सत्संग आज घर मौजूद है माशाल्लाह आज, तो उसका मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आप सत्संग के दीन को भी कायम रखा, आप सलम के नाम को भी कायम, आप सलम के नाम लेव को भी कायम रखा, जबकि बाकी लोगों की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह के हो जाते हैं उनको अल्लाह नहीं ख़त्म करता। चीज़ है कि आप सल्लम, अब देखो ना अंग्रेज़ लिखता है अपने वायसराय, वायसराय लिखता है अपने बादशाह को कि इस इंडिया में एक कब्र है जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है, ख्वाजा अजमेर शरीफ, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेर, उसके बारे में लिखा कि यहाँ पर एक कब्र है जो पूरे इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रही है। ये लोग उसकी इतना ख्याल रख रहे हैं। हाँ जी, तो अल्लाह पाक के मानने वालों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वालों की अल्लाह ताला निशान बना लेते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है। हाँ जी, तो ये बात है कि हर जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की बात है, उनके इनार का दीनार उदारम क्यामत तक इनकी सदाकत का गवाही देगा। हकीम नासिर खुसरो ने अपनी किताब मकरून में बड़े सिर हासिल बाज की कि अल्लाह ताला की तरफ से जो उलूम अम्बिया अलैहिस्सलाम को होता है कि वो दो हाल से खाली नहीं होते, या तो उकूल और हवास के तवस्सुल से हाल होते या बिलावास्ते उकूल हवास। दूसरे किस्म के उलूम को गैर माकूल और गैर महसूस कहते हैं, और वह अहकाम है जो फ़कत ज़ात इलाही से मुतालिक है। पहले किस्म के उलूम का उसूल या तो महज़ उकूल बिला हवास के तवस्सुल से हो या उकूल हवास हर दो के तवस्सुल से। पहले इलम को जिसका ताल्लुक मुजरदात से माकूलात कहते हैं, और दूसरे का इलम जिसका ताल्लुक अहवाल जिस्मानियत से इलम महसूसात कहते हैं, और दिली बुरहान जो हवास के खतरात से खुद महसूसात में भी हमेशा इस बात मुद्दा में उदबरा नहीं होती। तो मनकूलातुल्ला माकूलातुल्ला महसूसात में इसकी क्या पेश की जा सकती है? बस आप सब का इलम जो ज़ात इलाही से बरराज ताल्लुक रखता है, लामहाल तालीम इलाही पर मौकूफ़ है, जिसको लामाकूल महसूस कहते हैं। کیونکہ عقل اپنی اس مبدا کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی جو اس کی ذات پر مؤثر ہے، کیونکہ مسلم امر ہے کہ اصل کو اپنے مؤثر کو جس کا اس سے سابق ہونا لازم ادراک نہیں کر سکتا، بس عقول جب اپنے مبدا کے ادراک سے عاجز ہیں تو ذات کنا، ذات الہی کا کنا کیسے کر سکتے ہیں ادراک؟ اس ثابت ہو کہ علوم یا بلا لا معقول لا محسوس ہوتے، اور یہ علم عقل یا ازدہم میں ہی ودیت کیے جاتے، جس انبیاء علیہ السلام کی عقل مراد ہے اور معجزات اس کے نتائج ہیں. حاصل کلام یہ ہوا کہ خدا اور اس کی صفات کے ادراک کا طریقہ عقل و خرد سے برتر ہے، وہ وحی کی تعلیمات پر منحصر ہے، اور وجدان و ذوق سے اس کے حقائق منکشف ہو سکتے ہیں. بر رخی نقرائے یارو یہ ذرے، ورنما بر سکے نام منکرے. اے منکر، بلا تو کس چاند یا سونے کے سکے پر کسی منکر کا نام تو دکھا؟ اچھا، اگر اس بیان سے تشفی نہ ہوئے تو یہ آفتاب کی طرح روشن اور بسط زبان اپنے اعجاز کو ظاہر کرنے والا معجزہ جس کا نام قرآن ہے، اسی کو لے لو. یعنی اوپر مولانا انبیاء کے صدق پن کے ذکر حق کی بقا اور قیامت تک جاری رہنے اور منکروں کے نام نشان مٹ جانے سے احتجاج کیا ہے. اس پر شبہ ہوتا ہے کہ کفار کے بھی اپنے پیشاؤں کی اس طرح تعریف کرتے ہوں گے جس طرح مسلمان اپنے انبیاء کے، اور جس طرح اور بادشاہوں کے سکہ پر نام باقی نہیں رہتا، یوں ہی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی نہیں رہا. بس اس میں کیا فرق ہے؟ استدلال کیوں کر صحیح ہو سکتے؟ اس سے مقصد مولانا کا صرف اتنا ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء سے مقابلہ معارضہ کیا، بحیثیت مقابل معارض کفار کا کوئی پیروکار موجود نہیں ہے. بس یہود و نصارہ کفار ہے، مگر ابو جہل، ابو لہب و قارون وغیرہ کے پیروکار نہیں ہے. یعنی ان کا ذکر نہیں بلکہ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، خاص ذکر صحیح ہو یا غلط ہو. رہا ہنود کا اپنے رہنما کا ذکر کرنے کے پیشاؤں کے بارے میں نہیں کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے مقابل معارض تھے. ممکن ہے وہ اہل حق رہے ہوں اور موجودہ خرابی میں اعتقاد و عملن پائی جاتی بعد کے لوگوں کی تعریفیں ہوں. حضرت نے ایک بڑے عجیب لطیف نقطہ بیان فرمایا، فرمایا کہ نام کس کا باقی ہے؟ نام ان کا باقی ہے جو اللہ کے جو اللہ والے ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کا نام باقی ہے. تو اس پر خود اعتراض قائم کیا کہ کافروں کے بھی تو ہے. فرمایا کافر بھی جن کا نام لیتے وہ اصل میں ان کا نام لیتے جو اللہ والے تھے، لیکن انہوں نے اب تعلیمات غلط. اب جیسے عیسائی ہیں تو نام تو عیسیٰ علیہ السلام کا لیتے نا، لیتے غلط طریقے سے، لیکن لیتے تو نام عیسیٰ علیہ السلام کے. اس طرح یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اگرچہ غلط طریقے سے لیتے ہیں، لیکن لیتے تو موسیٰ علیہ السلام، کسی اور، ورنہ ابو جہل و قارون کا نام کوئی لے لینا کہ میں قارون کا پیروکار ہوں. کوئی کہتا ہے میں ابو جہل کا پیروکار ہوں، میں شداد کا پیروکار ہوں، میں فرعون کا پیروکار ہوں، میں کوئی نہیں، مطلب اس کا کوئی نہیں کرتا. اپنے نام کو یزید رکھتا ہے اپنے بچے کا، بے شک اس کی حمایت بھی کرتا ہو، لیکن اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے ہماری دعوت کی تھی، یہ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور مولانا عبد المہیمن جو حضرت سید طاؤلہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عطا المہیمن، ان وہ جو وہ بھی تھے ساتھ. تو جو جو ہمارے میزبان تھے ان کا ایک عرب ملازم تھے، تو اس نے کہا کہ یہ شمر کی اولاد سے ہیں. وہ شمر جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں شمر کی اولاد سے، تو ان کا سر اس طرح نیچے تھا، وہ اوپر نہیں دیکھ رہے تھے جب اس کا تعارف کر رہے تھے. حالانکہ اس میں کوئی قصور تو نہیں تھا، شمر کی اولاد میں ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اولاد میں کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شرمندہ تھے شمر کے ساتھ منسوب ہونے پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو اہل حق ہیں ان کا نام لوگ دڑرے سے لیتے ہیں، لیکن جو اہل باطل ان کا نام اب وہ لیتے ہیں، لیتے تو شرمندگی سے لیتے ہیں. تو یہ حضرت مطلب سمجھاتے ہیں کہ جو اہل حق ہیں ان کا نام اللہ پاک باقی رکھتے ہیں. اب چونکہ ٹائم پورا ہو گیا تو اب کیا کریں، اب تو ذکر بھی کرنا ہے، تو میرے خیال میں اسی پر کافی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ استغفر، شکر جی لے لے उसको आधा करके ना फिर उसमें डाल दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। الله أكبر الله لا إله إلا 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 الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو
ला इलाहा इल्लाहु 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حق 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 Huck, 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 حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارس الله 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 Allah 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 الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم یہ مناجات مقبول دے دے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لك صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم نسألك من خير ما تجيء به الرياح اللهم اجعلني واعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع وصي نصيحتك واحفظ وصيتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا من شيء فلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل حاجتك اخفض الاشياء عندي وقت اني حاجات الدنيا بشوق الى لقائك واذا اقرت عيون اهل الدنيا من دنياهم فاقرئني من عبادك اللهم نسألك الصحة والعافية والأمانة والحسن والخلق والرضا بالقدر اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا. اللهم اني اسالك التوفيق لمحبك من الامال وسيدك التوكل اليك وحسن ظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك واسدني بتقواك ولا تشكني بما اسدك. اللهم التب بي في تيسير كل اسير فان تيسير كل تيسير كل اسير عليك يسير واسر كل يسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اعف عني فانك غفور كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم الخيانه تراوي لما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى لتين تسكن القلب بزروه التم من خشيتك قبل ان تكون الدموع والادراس بالجمره. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقز لي اجري في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنه. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين الرحمن الدين ورحيمها أنت ترحمني فارحمني برحمة دوني بها رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك أعود السلام. أسألك هذا الجلال والإكرام تستجيب لنا دعوتنا وأن تغطينا رغبتنا وأن تغنينا من أغنيته عنا من خلقك. اللهم أخر لي واختر لي. اللهم أرزيني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو هبت عاجلا ما اخرت ولا تاخير ما اجلت. اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا واشرني في زمره المساكين. اللهم اجعلني من الذين اذا استبشروا واذا استغفروا. اللهم اني اسالك رحمه من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بامري وتلم بها شاثي وتسلى بديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها مالي وتلهمني برشدي فترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم اتني ايمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفرا ورحمه نال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على أعداء إنك سميع الدعاء. اللهم ما قصر عن رأي وعزوف عنه وملي ولم تبلغ منيتي بمسألة من خير وأتوا أحدا من خلقك أو خير أن تموت أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وأنقص رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور كما تجير بين البحير بحور أن تجير من أداب السر من دعوة الصبر في ذلك القبور. اللهم زل الحمل الشديد والأمر الرشيد أسألك يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المكربين الشهود ركي سجود المفين بالعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مدن سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنز مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله نستثناه ولا بربي ذكر وابتدعناه ولا لك شركاء يكذون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك ممات ومحيا إن أحييت وفاز فيما تفوز بعبادك الصالحين وإن أمت فاغفر له ورحمه. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية لما يدرك زمان ولا يدرك زمان لا يتفي العليم ولا يستخفي من العليم قلوب القلوب والجام الجم قلوب العاجم وألسنة وألسنة الأرض. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأي مؤمن أزيته وشتمته وجلدته ولو لأمته فجل له صلاة وقر زكاة وقربا تقرب بها إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشكاك والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار ما قرب إلي من قول أمل ومن شر ما أنت آخذ من ناصيتي وأعوذ بك من شر في هذا اليوم وشر ما بعده أو من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن نقترف على أنفسنا سوءا ونجره إلى مسلم أو وقت أسبغت ذنبا لا تغفر من زيق المقام يوم القيامة. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتوب علينا أنك التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم.